बुद्ध के चरण चिन्हों पर तीर्थ यात्रा। जहां जहां चरण पड़े गौतम के। इसको लिखा है ज़ेन मास्टर तिकनाथन। इन्होंने विचरते विचरते यात्रा इसका पहला अध्याय है। हरित बांस वृक्ष के नीचे युवा भिक्खु स्वास्थ्य पालथी मारे बैठा था और अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह वेनुवन विहार में एक घंटे से अधिक समय से ध्यान साधना कर रहा था, जबकि अन्य सैकड़ों भिक्षु बांस के वृक्षों के नीचे अपनी फूस की कुटियों में बैठे साधना कर रहे थे। महान गुरु गौतम, जिन्हें लोग प्रेम एवं श्रद्धावश बुद्ध कहते हैं, इस विहार में 400 भिक्षु शिष्यों के साथ निवास करते थे। यद्यपि यहां निवासियों की संख्या अधिक थी, किंतु वातावरण बहुत शांत था। विहार का क्षेत्रफल 40 एकड़ था और यहां बांस की नाना जाति प्रजातियों के वृक्ष लगे थे, जो मगध राज्य में जगह जगह से लाकर यहां लगाए गए थे। यह विहार मगध की राजधानी राजगृह से इतनी सी दूर था कि यह 30 मिनट में पहुंच जा सकता था। 7 वर्ष पहले राजा बिंबिसार ने यह विहार बुद्ध एवं संघ को दान में दिया था। स्वास्थी ने अपनी आंखों में मली और मुस्कुराया। उसकी टांगे अब भी मुड़ी थी, जिन्हें उसने धीरे धीरे खोला। इस 21 वर्षीय युवा को मान्य सारिपुत्त ने, जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य थे, 3 दिन पहले ही प्रवज्जा दी थी। प्रवज्जा समारोह के समय स्वास्थ्य के सघन सुनहरे बाल उस तरह से मुड़ गए थे। भिक्खु के समुदाय संघ का अंग बनकर स्वास्थ्य अत्यधिक प्रसन्न था। बहुत से भिक्खु उच्च घरानों में जन्मे हुए व्यक्ति थे। यह तो बुद्ध के भाई नंद, देवदत्त, अनिरुद्ध और आनंद। यदि भी अभी स्वास्थ्य का इनसे साथ परिचय नहीं कराया गया था, स्वास्थ्य ने इन्हें दूर से ही देखा भला था। अधिक प्रयोग से बदरंग हुए चीवर धारण करते हुए होने पर भी उनका अभिजात निश्चय रूप से झलकता था। ऐसे ऊंचे घरानों के लोगों का मित्र बनने में तो मुझे अभी पर्याप्त समय लगेगा, ऐसा स्वास्थी ने सोचा। लेकिन राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे स्वयं बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। स्वास्थी अस्पृश्य था, जो उस समय भारत की जनता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगों से भी नीच जाति समझी जाती थी। पिछले 10 सालों से वह भैंसों का चरवाहा था और भैंसों की देखभाल करता था, किंतु अब तो सत्ता से वह सभी वर्गों के भिक्षु के साथ रह रहा था और ध्यान साधना कर रहा था। हर कोई उसके प्रति कृपा भाव प्रदर्शित करता था, उसको नमन करता था, किंतु वह स्वयं अभी तक सहज नहीं हो पा रहा था। उसे आशंका थी कि उसे पूर्णतया सहज होने में भी अभी वर्ष लग जाएंगे। जैसे उसके मन में राहुल का विचार आया, आंतरिक उत्साह से परिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बुद्ध के पुत्र राहुल की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी और वह 10 वर्ष की आयु से ही श्रामनेर के रूप में संघ में रह रहा था। 2 सप्ताहों में ही राहुल और स्वास्थी में गहरी मित्रता हो गई थी। राहुल ने इस स्वास्थी को सिखाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना है। राहुल यद्यपि अभी प्रवज्जित भिक्खु नहीं था, किंतु उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। प्रवज्जा प्राप्त करने के लिए अभी उसे तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक उसकी आयु 20 वर्ष की नहीं हो जाती। स्वास्थी को 2 सप्ताह पूर्व के दिनों का स्मरण हो आया, जब गया के समीप स्थित उसके वेलाग्राम में बुद्ध पहुंचे थे और उसे भिक्खु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध उसके घर पर पहुंचे तो स्वास्थ्य अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। उसकी दो बहनें 16 वर्षीय बाला और 12 वर्षीय भीमा घर में थी। बुद्ध को देखते ही बाला उन्हें तुरंत पहचान गई। वह स्वास्थ्य को ढूंढने के लिए बाहर की और झपटी ही रही थी। बुद्ध ने उसे कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे साथ चल रहे भिक्खु, जिनमें राहुल भी था, नदी के तट पर चले जाकर उसके भाई को खोज देंगे। तीसरे पहर वे लोग नैरंजना नदी के तट पर आए, जहां शास्त्री और रूपक भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहला रहा था। बुद्ध को देखते ही दो युवक पानी में से निकलकर दौड़ते हुए नदी तट तक आए और करबद्ध प्रमाण करके उनके समक्ष प्रणत हुए। स्वास्थ्य और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने सस्नेही मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम इतने बड़े हो गए। स्वास्थ्य अवाक था। बुद्ध का शांत मुखमंडल, उनकी स्नेहपूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मर्म भेदिनी तेजोमय दृष्टि देखकर स्वास्थ्य की आंखें छलछला हुई। बुद्ध गैरिक चिवर धारण किए हुए थे, जिस पर ध्यान के खेत की डिजाइन बनाते हुए कपड़े से सिले हुए थे। वह अब भी नंगे पैर ही थे, जैसे कि आज से 10 वर्ष पहले जब वह उसे इसी स्थान के आसपास मिले थे। 10 वर्ष पहले इसी नरेंद्रा नदी और बोधि वृक्ष के नीचे उसने घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधि वृक्ष पीपल वहां से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहां तक 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था। बुद्ध के पीछे खड़े 20 भिक्षु भी नंगे पैर थे और धान के खेतों के डिजाइन वाले चिवर गैरिक चिवर पहने हुए थे। अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्थ्य ने पाया कि बुद्ध का चिवर अन्य भिक्षुओं के चिवरों से एक हाथ अधिक लंबा था। बुद्ध के साथ ही स्वास्थ्य की आयु का एक सामनेर खड़ा था, जो सीधे उसी की ओर देखते हुआ मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने अपने स्नेहपूर्ण हाथ स्वास्थ्य और रूपक के सिर पर रखे और बताया कि वह राजगृह जाते हुए यहां जानबूझकर रुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों को नहला रहो, इसके बाद हम स्वास्थ्य की झोपड़ी तक साथ साथ ही चलेंगे। वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्थ्य और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया, जो अभी तक स्वास्थ्य की और मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था। राहुल स्वास्थ्य से आयु में 3 वर्ष छोटा था, किंतु दोनों का कद एक बराबर था। श्रामनर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्षु के वस्त्र जैसे ही थे। राहुल ने अपने भिक्षा पात्र रूपक को पकड़ा दिया था और स्वास्थ्य एवं रूपक के बीच में दोनों नए मित्रों के कंधों पर प्रेमपूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था। उसने अपने पिता के श्रीमुख से स्वास्थ्य और उसके परिवारजनों के विषय में इतना कुछ सुन रखा था, फिर धीरे से उसे प्रतीत हो रहा था वह उनसे पूर्ण परिचित है। दोनों भाई राहुल के इस प्रेमपूर्व व्यवहार से स्नेहसिक्त हो गए। स्वास्थ्य के घर पहुंचने पर बुद्ध ने स्वास्थ्य को भिक्खु समुदाय से सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म साधना करने के लिए आमंत्रित किया। 10 वर्ष पूर्व जब वह बुद्ध से पहली बार मिला था, तो उसने बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे। अब स्वास्थ्य 21 वर्ष का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुंचे थे। बुद्ध उसे दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे। रूपक भैंसों को उनके मालिक रामभूल के घर छोड़ने गया था। बुद्ध शास्त्री की झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी पीढ़ी पर बैठ गए और अन्य भिक्खुओं को उन्होंने पीछे खड़े हो गए। मिट्टी की दीवारों से और फूस की छत से बनी स्वास्थ्य की झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते थे। बाला ने स्वास्थ्य से कहा, भैया तुम बुद्ध के साथ जाओ, आज रूपक आपसे भी अधिक तगड़ा है। जब आपने भैंसों की देखरेख की और उसका आरंभ किया था और मैं भी घर गृहस्थी का काम बखूबी संभाल कर सकती हूँ। आपने हमारे 10 वर्षों से लालन पालन किया है और अब हम अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में आ गए हैं। वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठारी के पास बैठी भीमा अपनी बड़ी बहन की ओर बिछा बिना कुछ बोले देख रही थी। स्वास्थी ने भीमा की ओर देखा, वो प्यारी सी छोटी लड़की थी। जब स्वास्थी बुद्ध से पहली बार मिला था तो बाला की आयु 6 वर्ष की, रूपक की 3 वर्ष का था और भीमा तो बच्ची ही थी। बाला भाई बहन का खाना बना लेती थी और रूपक मिट्टी से खेल खेलता था। उनके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में ही स्वास्थी परिवार का मुखिया बन गया था। स्वास्थी को भैंसों के देखभाल करने चराने का काम मिल गया था। स्वास्थी बहुत परिश्रमी था, इसलिए इतना कमा लेता था जिसके परिवार का पालन कर सके। और छोटी बहन भीमा के लिए भैंस का दूध भी लाया आया करता था। उसको और देखकर शायद स्वास्थी उसकी भावनाओं को जानना चाह रहा था। ये समझते हुए भीमा मुस्करा दी। वह एक क्षण के लिए तो हिचकिचाई, किंतु फिर धीरे से बोली, भैया आप बुद्ध के साथ जाओ। ये कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया जिससे वह अपने आंसू छिपा ना सके। भीमा ने स्वास्थी को लो ये कहते हुए अनेक बार सुना था कि वह बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर साधना करना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही जाए। किंतु जब वह क्षण वास्तव में आया, उपस्थित हुआ, तो वह अपने दुख को छिपा नहीं पाई। उसी समय रूपक गांव से लौट आया और उसने भीमा को यह कहते हुए सुना, बुद्ध के साथ चले जाओ। वह समझ गया कि विदाई का क्षण आ गया है। उसने स्वास्थी की ओर देख कर कहा, हाँ भैया आप बुद्ध के साथ चले जाइए। सारा परिवार एकदम मौन हो गया। रूपक ने बुद्ध की ओर देख कर कहा, परम आदरणीय, मुझे आशा है कि आप अपने श्री चरणों में अध्ययन करने की अनुमति मेरे भाई को प्रदान करेंगे। मैं भी अब इतना बड़ा हो तो मैं परिवार का पालन कर सकूं। स्वास्थ्य की ओर मुड़कर उसने आंसू रोककर कहा, किंतु भैया कृपा करके बुद्ध से पूछिए कि क्या आप घर आ सकेंगे और समय समय पर हमसे मिलते रहेंगे। बुद्ध उठ खड़े हुए और स्नेहपूर्वक भीमा के सिर के बाल सहलाए, बच्चों अब खाना खाओ, कल मैं आकर स्वास्थ्य को साथ लेके जाऊंगा ताकि सभी साथ साथ राजगृह जा सके और मैं और सभी भिक्षुगण बोधि वृक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे। बुद्ध ने द्वार पर पहुंचकर मुड़कर स्वास्थ्य की ओर देखा और कहा, कल सवेरे तुम्हें कुछ भी साथ लाने की आवश्यकता नहीं है, जो कपड़े तुमने पहने रखे वे ही पर्याप्त हैं। उस रात सभी बच्चे बड़ी देर तक जागते रहे। विदा लेते हुए पिता की भांति स्वास्थी ने उनको अंतिम परामर्श देते हुए कहा कि तुम लोग एक दूसरे की और घर की भी देखभाल मिलजुल कर करना। वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाए रहा। आंसू रोकने में असमर्थ रहने पर भी भीमा जब अपने बड़े भाई की गोद में थी तो सीने से सिर लगाकर सुबह उठी, किंतु उसके बाद उसने अपना सिर उठाया, दीर्घ निश्वास लिया और भाई की ओर देखकर मुस्कुरा दी। वह नहीं चाहती थी कि स्वास्थी उसके आंसुओं से दुखी। तेल के दिए को धुंधला प्रकाश झोपड़ी में हो रहा था, किंतु इतना प्रकाश तो था कि स्वास्थी उसे मुस्कुराता देख सके। स्वास्थी को उसका मुस्कुराना अच्छा लगा। अगले दिन सवेरे स्वास्थी की मित्र सुजाता उसे विदा करने आई। पिछली शाम को जब वो नदी के तट की ओर जा रही थी तो उसने बुद्ध को देखा था और बुद्ध ने कहा था कि स्वास्थी अब भिक्खु संघ में सम्मिलित होगा। ग्राम प्रधान की पुत्री सुजाता स्वास्थी से आयु में 2 वर्ष बड़ी थी। वह भी गौतम से संबोधि प्राप्त से पहले ही मिल चुकी थी। सुजाता ने स्वास्थी को बड़ी जड़ी बूटी की औषधि बनाकर साथ ले जाने के लिए दी। उनके संक्षिप्त बातचीत ही हो पाई थी तभी उसके शिष्य आ गए। स्वास्तिक का भाई और उसकी बहनें पहले ही जाग चुके थे और अपने भाई को विदा देने के लिए तैयार थे। राहुल ने प्रेमपूर्वक प्रत्येक भाई बहन से बातचीत की और उन्हें मनोबल पक्का रखने और एक दूसरे की देखभाल करते रहने की प्रेरणा दी। उसने वचन दिया कि हम भी जब भी उर्मिला के आसपास तक भी आएंगे तो तुम लोगों से मिलने अवश्य आएंगे। स्वास्थ्य के परिवारजन और सुजाता बुद्ध और भिक्खु के साथ नदी के तट तक गए और उन्होंने बुद्ध, भिक्खु, राहुल तथा स्वास्थ्य को हाथ जोड़कर विदा किया। स्वास्थ्य के मन में हर्ष और भय की भावनाएं भरी हुई थी। यह पहला अवसर था जब वो उर्मिला गांव छोड़कर जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि राजगृह पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अधिकांश व्यक्ति तेजी से चलते किंतु बुद्ध और उनके भिक्षु धीरे धीरे और परम सहजता से चलते थे। जब स्वास्थ्य ने अपने कदम धीमे किए तो उसका हृदय शांत हो गया। उसने स्वयं को बुद्ध धर्म और संघ के प्रति हृदयता और हार्दिकता पूर्वक समर्पित कर दिया। अब उसका यही मार्ग था। उसने उस भूमि और उन लोगों को जो उसके लिए पूर्णता परिचित थे अंतिम बार मुड़कर देखा और पाया कि सुजाता और उसके परिवारजन वन के वृक्षों की छाया में मिले हुए छोटे छोटे काष्ठखंड मात्र दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को प्रतीत हुआ कि बुद्ध विचरण का आनंद लेने के लिए ही चलते हैं और इस बात की चिंता ही नहीं करते कि वह कहां तक पहुंचेंगे। यही स्थिति सभी भिक्खुओं की भी थी। कोई भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए न तो चिंतित था और न ही अधीर। सभी के मन संतुलित और शांतिमय थे। ऐसा लगता था मानो सभी सामूहिक रूप से टहल रहे हैं। कोई भी क्लांति का अनुभव नहीं करता, फिर भी वे प्रतिदिन खासा लंबा मार्ग तय कर लेते थे। प्रतिदिन वह समीपस्थ गांव में रुकते थे और भिक्षाटन करते थे। वे मार्गों पर बुद्ध के पीछे एक पंक्ति बनाकर चलते। उनकी चाल गरिमामय होती और श्वसन क्रिया तथा पग संचलन पर ध्यान केंद्रित करते। यदि ग्रामवासी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भोजन डालते तो वो रुक जाते। कुछ ग्रामीण तो मार्ग के दूसरे ओर खड़े होकर ही उनका सम्मान पूर्वक नमन करते। भोजन मिलने पर भिक्खु सभी लोगों के कल्याणार्थ प्रार्थना करते। भिक्षाटन समाप्त कर लेने पर वे धीरे धीरे गांव को छोड़कर कुछ वृक्षों या घास वाले स्थान को खोजते। वे घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप से बांट लेते और ध्यान रखते कि यदि किसी भिक्षु का भिक्षा पात्र खाली है तो उसे भी भोजन दिया जाए। राहुल पास के झरने से एक घड़ा पानी भर लाता और सम्मानपूर्वक बुद्ध के सामने रख देता। बुद्ध जब अपनी हाथों की अंजलि फैलाते तो राहुल उनके हाथों पर जल डालकर साफ करता। ऐसी प्रत्येक भिक्षु के लिए करता हुआ वो अंत में स्वास्थ्य के पास आया। स्वास्थ्य के पास तब तक कोई भिक्षा पात्र नहीं था तो राहुल ने अपने भिक्षा पात्र का आधा भोजन के लिए ताजे पत्ते पर रख कर अपने नए मित्र स्वास्थ्य को दे दिया। भोजन आरंभ करने से पूर्व भिक्खुओं ने हाथ जोड़े सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मौन रहकर सचेत भाव से प्रत्येक कौर को ग्रहण किया। भोजन के उपरांत कुछ भिक्षुओं ने चलित ध्यान किया तो कुछ ने बैठकर ध्यान साधना की और कुछ ने थोड़ी सी झपकी ली। जब दिन का सर्वाधिक गर्म भाग बीत गया तो वे फिर मार्ग पर चल पड़े और तब तक चलते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। रात्रि विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्लास समय वन ही था। प्रत्येक भिक्खु का अपना आसन होता था और बहुत से भिक्खु उस पर पद्मासन लगकर बैठकर आधी रात तक ध्यान करते रहते, फिर अपना चिवर बिछाकर सो जाते। प्रत्येक भिक्खु के पास 2 चिवर होते थे, एक वो शरीर पर धारण किए होता और दूसरा वर्षा या शीत से रक्षा करने के लिए रखते। अन्य लोगों की भांति स्वास्थ्य भी ध्यान साधना करता रहा और वृक्ष की जड़ तक तकिया बनाकर धरती पर ही सो गया। अगले दिन प्रातः जब स्वास्थ्य जागा तो उसने देखा कि बुद्ध और अन्य भिक्षु शांत भाव से साधना कर रहे हैं। उनके मुखमंडल से अत्यंत शांति और तेज विकीर्ण हो रहा है। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उभरा प्रत्येक भिक्कु ने अपना अतिरिक्त चिवर तक किया, भिक्षा पात्र हाथ में लिया और दिन की यात्रा आरंभ कर दी। दिन में चलते और रात में विश्राम करते हुए वे लोग 10 दिनों में मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। शास्त्री ने पहली बार नगर देखा था। सड़कों के किनारे पर घरों में निवासी बड़ी संख्या में रहते थे। सड़कों पर अश्वचालित वाहन चल रहे थे। हर ओर ऊंची ऊंची आवाजें और ठाकों के स्वर गूंज रहे थे, किंतु भिक्कों का मौन जुलूस उसी प्रकार चल रहा था जैसे वे मौन भाव से वन प्रांतर अथवा धान के खेतों से विचरण करते चल रहे हो। कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए तनिक सा रुकते तो कुछ बुद्ध को पहचान कर उनके सम्मान में श्रद्धा पूर्वक नमन करते। भिक्कु वर्ग उसी प्रकार शांत भाव से तब तक चलता रहा जब तक वे नगर के उस पार वेणुवर विहार नहीं पहुंच गए। समस्त विहार में त्वरित गति से समाचार फैल गया कि बुद्ध लौट आए हैं और कुछ क्षणों में 400 भिक्कु बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्र हो गए। बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल सभी की कुशलक्षेम और साधना अभ्यास में विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य को सारिपुत्र को सौंप दिया जो राहुल के भी आध्यात्मिक गुरु थे। सारिपुत्र वेणुवन विहार के श्रामणरों के साथ श्रामणरों के गुरु थे और वो लगभग 50 युवक श्रामणरों के साधना अभ्यास का मार्गदर्शन करते थे। वे श्रामणे विहार में 3 सालों से कम समय से आए हुए थे। विहार के प्रबंधाचार्य कौंडिन्य नामक एक भिक्खु थे। राहुल से कहा गया कि वह विहार जीवन के आचरण की जानकारी स्वास्थ्य को दे, यथा कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है और कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चलित ध्यान करना है, कैसे बैठकर ध्यान धारणा करना है और कैसे श्वसन क्रिया पर ध्यान देना है। उसने स्वास्थ्य को यह भी बताया कि भिक्कू को चिवर कैसे धारण करना है, कैसे भिक्षा पात्र पकड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे अपने भिक्षा पात्र साफ करना है। 3 दिनों तक स्वास्थ्य लगाकर राहुल के साथ साथ ही रहा जिससे वह इन सब बातों को भली प्रकार सीख सके। राहुल ने स्वास्थ्य को पूरे मनोयोग से सभी आचरण निर्देश बताए समझाए, किंतु स्वास्थ्य समझता था कि ये सब कार्य सहज स्वाभाविक रूप से करने लगने के लिए उसे अभी वर्षों का अभ्यास करना होगा। इन आधारभूत मार्गनिर्देश के बाद सारिपुत्र ने शास्त्री को अपनी कुटिया में बुलाया और भिक्कु द्वारा अपनाए जाने वाले शीलों की शिक्षा दी। भिक्कु वह होता है जो गृहत्याग कर बुद्ध को गुरु, धर्म को अध्यात्म जागृति का मार्ग और संघ को ऐसे समुदाय के रूप में स्वीकार करता है जो सद्धर्म मार्ग पर चलने में एक दूसरे को सहायता देता है। भिक्कु का जीवन सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकार शून्यता आती है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क साधने का एक माध्यम भी होता है जिससे उन्हें यह समझने में सहायता की जा सके कि प्रेम और सौदार्य प्रज्ञा का मार्ग क्या है, जिसकी शिक्षा बुद्धदेव सबको बताते थे। 10 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य और उनके मित्रों ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ये देशना करते सुना था कि आत्म जागृति का मार्ग ही प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग है। इसलिए सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को जो कुछ कहा उसे वो अच्छी तरह हृदयगम कर सका। यद्यपि सारिपुत्र का मुखमंडल गंभीर था किंतु उनकी आंखें और मुस्कान में अपार प्रेम और करुणा का तेज ही भी था। उन्होंने स्वास्थ्य से कहा कि शीघ्र ही एक दीक्षा समारोह होगा जिसमें उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित करने के लिए प्रवज्जा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उस अवसर पर क्या क्या शब्द उच्चारण करने हैं। सारिपुत्र ने स्वयं ही दीक्षा समारोह की अध्यक्षता में की जिसमें 20 भिक्षुओं ने भाग लिया। उस अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्थित थे जिससे स्वास्थ्य को विशेष प्रसन्नता हुई। सारिपुत्र ने मौन भाव से एक गाथा मन ही मन में पढ़ी और स्वास्थ्य के सिर के बाल के कुछ गुच्छे काटे। फिर उन्होंने वह उस्तरा राहुल को दे दिया जिससे स्वास्थ्य से सिर का पूर्णतः मुंडन किया। सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को 3 चिवर, 1 भिक्षा पात्र और 1 घड़ा दिया। राहुल ने उसे सिखा ही दिया था कि चिवर कैसे धारण करना है। इसलिए स्वास्ती ने बिना कठिनाई के चीवर धारण कर दिया और बुद्ध तथा उपस्थित अन्य भिक्षुओं के समक्ष अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रणत हुआ। बाद में उस दिन प्रांतः उसने पहली बार प्रवज्जित भिक्षु के रूप में भिक्षाटन किया। वेणुवन विहार के भिक्षु कई दलों में विभक्त होकर राजगुरु में भिक्षाटन करते थे। स्वास्ती जिस दल में था उसका नेता सारिपुत्र थे। विहार से भिक्षाटन के लिए निकलते समय कुछ पग चलकर स्वास्ती ने स्वयं को स्मरण दिलाया कि भिक्षाटन सद्धर्म के मार्ग की साधना का एक अंग है। उसने अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और प्रत्येक पग शांतिपूर्वक सचेतावस्था में उठाया। राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा था। यद्यपि स्वास्थ्य प्रवजित भिक्षु था किंतु वह समझता था कि उसका अनुभव राहुल के अनुभव की तुलना में बहुत कम है। उनके मन में संकल्प किया कि वह विनम्रता और सौम्यता के भाव को पूर्ण मन से अपनाए। मैं कुछ भी उठा नहीं रहा। उस दिन का वातावरण ठंडा था। सजगता सहित दोपहर का भोजन कर लेने के बाद प्रत्येक भिक्षु ने अपना पात्र धोकर साफ किया और अपना अपना आसन जमीन पर बिछा कर बुद्ध की ओर मुख करके बैठ गए। वेणुवन की गौरैया चिड़िया निडर होकर भिक्षु के बीच आ जाती और कुछ बांसों की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ जाती थी। शास्त्री ने देखा कि राहुल बुद्ध के ठीक सामने बैठा है। वो पंजों के बल चलता हुआ वहां तक गया, राहुल के बराबर ही आसन डालकर बैठ गया। सभी पद्मासन पर बैठे हुए थे। शांत और गरिमापूर्ण वातावरण में सभी मौन थे। स्वास्थ्य जानता था कि सभी सजगता से श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और बुद्ध की देशना आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बांसों से बना मंच बस इतना ही ऊंचा था कि हर कोई बुद्ध को भली भांति देख सके। बुद्ध एकदम सहज थे किंतु समूचा वातावरण गरिमापूर्ण था। जब उन्होंने एकत्र भिक्षुओं को देखा तो उनकी आंखों में प्रेममय करुणा की वर्षा हो रही थी। उनकी आंखें जब शास्त्री और राहुल पर टिकी तो वह मंद मंद मुस्काई और अपनी देशना आरंभ की। आज मैं आपसे भैंसों की देखभाल की चर्चा करूंगा। अच्छे चरवाहे को क्या क्या आना चाहिए और उसे क्या कुछ करना चाहिए। जो भैंसों की ठीक से देखभाल करता है वह अपने भैंसों को आसानी से पहचानता भी है। वह हर एक भैंसे की प्रकृति प्रवृत्ति को जानता है। वह जानता है कि कैसे रगड़कर उन्हें नहलाना है, उनके घावों को कैसे ठीक करना है, धुएं के माध्यम से मच्छरों को कैसे भगाना है, उनके चलने के लिए सुरक्षित रास्ता खोजना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, नदी पार करने के लिए सुरक्षित एवं उतला स्थान देखना है, उनके लिए ताजी घास और पानी ढूंढना है, चरागाहों को सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे अधिक उम्र के भैंसों को छोटे भैंसों के लिए आदर्श बनाना है। सुनो भिक्को, जैसे चरवाहा अपने हर भैंसे को पहचानता है उसी प्रकार भिक्कू को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तत्वों को जानना चाहिए। जैसे चरवाहा हर भैंसी की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है उसी प्रकार भिक्कू को जानना चाहिए कि शरीर वाणी और चित्त के कौन कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन कौन से बुरे। जैसे चरवाहा अपनी भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहलाता है, भिक्कू को अपने मन और शरीर को इच्छाओं राग क्रोध और वितृष्णा के मैल से कैसे शुद्ध रखना चाहिए।
जैसे बुद्ध देशना दे रहे थे तो उन्होंने स्वास्थ्य पर से दृष्टि नहीं हटाई। स्वास्थ्य ने अनुभव किया कि बुद्ध की देशना का स्रोत वही है। उसे याद आया कि वर्षों पहले वह जब बुद्ध के पास बैठता था तो बुद्ध पूछते थे कि तुम भैंसों की देखभाल कैसे करते हो। सभी कामों को विस्तार से बताया। अगर वह ये सब बातें उन्हें नहीं बताता तो राजमहलों में पड़ा बड़ा राजकुमार भली भैंसों की देखभाल की इतनी बातें कैसे जान सकता था। यद्यपि बुद्ध सामान्य स्वर में ही देशना दे रहे थे किंतु उनका स्वर और हर शब्द एकदम स्पष्ट था। उनका एक एक शब्द हर कोई समझ रहा था। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के गाहों की देखभाल करता है, भिक्कु को अपनी छह इंद्रियों आंख कान नाक जिह्वा शरीर और चित्त पर नजर रखनी चाहिए जिससे वे आसक्ति में भ्रमित न हो जाए। जैसे चरवाहा आग जलाकर धुएं के द्वारा भैंसों की मच्छरों से रक्षा करता है, उसी प्रकार भिक्कु को भी उपदेशों का प्रयोग करके जागृत रहना चाहिए जिससे वह अपने आसपास के लोगों को दिखा सके कि शरीर एवं चित्त को अभिप्सावों का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे चरवाहा भैंसों के आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ते तलाश करके रखता है, भिक्कु को उन मार्गों से बचना चाहिए जो ख्याति धन एवं इंद्रिय सुख की कामना जगाते हैं, जैसे होटल या थिएटर में जाते हैं। जिस प्रकार चरवाहा अपने भैंसों से प्रेम करता है, भिक्कु को ध्यान के आनंद और शांति की चाह रखनी चाहिए। जैसे चरवाहा भैंसों को नदी पार ले जाने के लिए सुरक्षित और उथले पानी वाली जगह की खोज करता है, उसी प्रकार भिक्कु को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चार आर्य सत्य पर निर्भर रहना चाहिए। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के लिए ताजी घास और पानी की खोज करता रहता है, भिक्कु का सम्यक जागरूकता के चार चरणों को जानना चाहिए जो निर्वाण की दिशा में बढ़ने के लिए सबल होते हैं। जिस प्रकार चरवाहा खेतों को भैंसों द्वारा जरूर से ज्यादा चरने से बचाता है, उसी प्रकार भिक्कु को अपने निकट के उस समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए जिससे वह भिक्षा प्राप्त करता है। जिस प्रकार चरवाहा बड़े भैंसों को छोटी आयु की भैंसों के लिए आदर्श के रूप में प्रयोग करता है, भिक्कु को वैसे ही वैरुद्ध के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करना चाहिए। और भिक्कु जो भी इन 11 बातों से आचरण करता है वह 6 वर्षों के अभ्यास द्वारा अरहंत बन सकता है। स्वास्थ्य आश्चर्यपूर्वक सब कुछ सुनता रहा। बुद्ध को वह हर बात याद थी जो 10 वर्ष पहले उसने उनसे कही थी, और उसकी हर बात को बुद्ध ने भिक्कु द्वारा तपस्या के मार्ग पर चलने का साधन बनाने के लिए प्रयोग किया था। यद्यपि स्वास्थ्य जानता था कि बुद्ध समस्त भिक्कु समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उनके मन पर इस बात का स्पष्ट छाप थी कि मानो बुद्ध सीधे उसे ही संबोधित कर रहे हों। उसकी आंखें एक पल के लिए भी बुद्ध के चेहरे पर से नहीं हटी थी। उनके वचन ऐसे थे जो सीधे हृदय को छूने वाले थे। हालांकि 6 इंद्रियां, 4 आर्य सत्यों और सम्यक जागरूकता के 4 चरण शरीर की गूढ़ शब्दावली को स्वास्थ्य समझ नहीं सका था, और राहुल से पूछकर उनके अर्थ को बाद में भली प्रकार जान लेगा, किंतु बुद्ध की देशना का मूल भाव वह समझ गया था। बुद्ध की देशना चल रही थी, वह उपस्थित भिक्षुओं को भैंसों को चलने के लिए सुरक्षित मार्ग चुनने के विषय में बता रहे थे। अगर उस मार्ग में बहुत से कांटे होंगे तो वे भैंसों को चुभ जाएंगे जिनसे उन्हें घाव लगेंगे, घाव पक सकते हैं, और यदि चरवाहों को पता नहीं है कि घावों को कैसे ठीक करना है तो भैंसों को बुखार हो सकता है और वो मर भी सकता है। सम्यक धर्म मार्ग का आचरण करना भी वैसा ही है। यदि भिक्कु सम्यक धर्म मार्ग नहीं जान लेगा तो उसका मन तथा शरीर घायल हो सकते हैं। लोभ और क्रोध उसके घावों को और भी विषाक्त बना सकते हैं, और इसी स्थिति इस सीमा तक पहुंच सकती है कि निर्वाण का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाए। बुद्ध बोलते बोलते थोड़ा रुके। उन्हें स्वास्तिक को संकेत से अपने पास आने के लिए कहा। स्वास्तिक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने स्वास्तिक का उपस्थित भिक्षुओं से परिचित कराते हुए कहा, 10 वर्ष पहले मेरी भेंट स्वास्तिक से गया के समीप एक वन में हुई थी। जब मुझे संबोधि की प्राप्ति नहीं हुई थी उस समय यह 11 वर्ष का था। स्वास्तिक की लाई हुई कुशा से मैंने आसन बनाया था जिस पर मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था। भैंसों की देखभाल की जो भी बातें मैंने अभी बताई है वे सब मैंने इसी से ही सीखी थी। मैं जानता था कि ये बहुत अच्छा चरवाहा है और आज मैं जानता हूं कि एक श्रेष्ठ भिक्षु भी बनेगा। सभी की आंखें स्वास्थ्य पर लगी थी। उनके कान और गाल एकदम लाल हो उठे। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उनको नमन किया और उसने भी सभी को नमन किया। सचेत श्वसन क्रिया की 16 विधि बताने की राहुल को आज्ञा देते हुए बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की। राहुल ने बड़े खड़े होकर हाथ जोड़े और घंटा ध्वनि के समान स्पष्ट स्वर में प्रत्येक विधि का वर्णन किया और भिक्षु समुदाय को नमन किया। बुद्ध उठ गए, खड़े हुए और मंद गति से अपनी कुटिया में चल गए। उनके बाद सभा में आए सभी भिक्षुओं ने अपने अपने आसन उठाए और धीरे धीरे वन में अपने अपने स्थानों पर चले गए। कुछ भिक्षु कुटियों में रहते थे। बहुत से भिक्षु बांस की वृक्षों के नीचे ही खुले ही सोते और ध्यान साधना किया करते थे। जब बहुत तेज वर्षा होती तो वे लोग अपने आसन उठाकर कुटियों में या प्रार्थना कक्षों में शरण लेते थे। स्वास्थ्य के आचार्य सारिपुत्र ने राहुल के पास ही खुले में उसके रहने के लिए स्थान नियत किया था। जब राहुल छोटा ही था तो वह आचार्य की कुटियों में रहता, वही उसके मार्गदर्शक थे। अब उस बांस वृक्ष के नीचे रहने का स्थान दिया गया था। राहुल के साथ रहने का स्थान पाकर स्वास्थ्य बहुत प्रसन्न था। उसी दिन तीसरे पहर बैठकर ध्यान साधना करने के पश्चात स्वास्थ्य ने अकेली चलित ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने एकांत मार्ग चुना जिस पर किसी ने मिलना ना हो, किंतु उसने पाया कि श्वसन क्रिया पर ध्यान करते रहना कठिन कार्य है। उसका ध्यान अपने भाई बहनों और घर की ओर चला गया। नैरेद्र नदी की ओर जाता हुआ मार्ग उसकी स्मृति में कूद गया। उसने देखा कि छोटी सी भीमा ने अपने आंसू छिपाने के लिए मुंह नीचा कर दिया था और रूपक अकेली रामभूल को भैंसों की देखभाल कर रहा है। उसने इन विचारों को चित्त से हटा देने के लिए अपना ध्यान अपने पद संचलन और श्वसन क्रिया पर केंद्रित करने का प्रयास किया। उसे इस बात पर शर्म आई कि वह अपने अभ्यास में नहीं जुट पाया, वह बुद्ध के विश्वास के योग्य नहीं है। चलित ध्यान करने की इस चेष्टा के बाद उसने सोचा कि इस विषय में वह राहुल से सहायता मांगेगा। इसके अलावा और भी बातें थी जो बुद्ध ने अपनी देशना के समय आज प्रातः कही थी, जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसे विश्वास था कि उन बातों को राहुल समझा देगा। राहुल के विषय में सोचते ही वो उत्साहित और शांत हो गया। इससे उसे अपने श्वसन क्रिया एवं पग संचलन पर ध्यान लगाना आसान हो गया। स्वास्थ्य को राहुल की खोज नहीं करनी पड़ी क्योंकि वह स्वयं ही उसे ढूंढता हुआ आ गया। वह स्वास्थ्य को लेकर बांस के वृक्ष के नीचे अपने स्थान पर आ गया और कहा, आज अपराह में मैं मान्य आनंद से मिला। वह तुमसे उस समय की सभी बातें जानने के लिए इच्छुक है जब तुम पहली बार बुद्ध से मिले थे। राहुल ने मान्य आनंद कौन है? वो शाक्य पंथ के एक राजकुमार है और बुद्ध के चचेरे भाई है। वो 7 वर्ष पूर्व ही भिक्षु बने थे और आज श्रेष्ठतम शिष्यों की गणना उनकी होती है। वही महान गुरु के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। मान्य आनंद ने हम लोगों को कल ही शाम अपनी कुटिया में आने के लिए कहा। बुद्ध जब गया वन में तपस्या कर रहे थे उस समय के विषय में, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, जानना चाहता हूँ। क्या बोधिसत्व ने अपना अभी तक वह सब नहीं बताया? बताया तो है किंतु विस्तार से। मुझे विश्वास है कि उस समय की बहुत सी बातें तुम बता सकोगे। बातें तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मुझे जो भी यादें अवश्य बताऊंगा। राहुल मान्य आनंद कैसे व्यक्ति है? मुझे उनसे मिलने के लिए कुछ घबराहट हो रही है। चिंता बिल्कुल मत करो, वे बहुत दयालु एवं मैत्रीपूर्ण हैं। मैंने उन्हें जब तुम्हारे परिवार के विषय में बताया तो वह बहुत हर्षित हुए। राहुल जब उठकर चलने को हुआ तो स्वास्थी ने उसका चिवर पकड़ लिया और कहा, आप कुछ देर और नहीं रुक सकते? मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आज सवेरे देशना में बुद्ध ने 11 बातें चर्चा की थी जिनका पालन भिक्कू को करना चाहिए, लेकिन मुझे वे सभी बातें याद नहीं रही। क्या आप मुझे वे बातें दोबारा बता सकेंगे? मैं स्वयं उनमें से 9 बातें ही याद रख पा रहा हूं। चिंता मत करो, कल वे सब बातें मान्य आनंद से पूछ लेंगे। क्या आपको विश्वास है कि मान्य आनंद को सभी बातें याद होगी? निश्चित ही, यदि वे 111 होती तो भी मान्य आनंद को याद होती। तुम अभी उनको जानते नहीं, किंतु यह सभी उनकी प्रखर स्मरण शक्ति के प्रशंसक है। बुद्ध जो कुछ भी कहते उसकी छोटी से छोटी बात तक को पूर्ण शुद्धता के साथ वे दोहरा सकते हैं। या सभी उनको बुद्ध का सर्वाधिक ज्ञान संपन्न शिष्य मानते हैं। जब भी कोई बुद्ध की देशना की कोई बात भूल जाता है तो वो मान्य आनंद से पूछ लेता है। कभी कभी श्रवण वर्ग अध्ययन सत्रों का आयोजन करता है तो मान्य आनंद बुद्ध की आधारभूत शिक्षाओं को सुनाते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे और कल उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ कि चरित ध्यान करते समय आप मन को कैसे शांत रखते हैं? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि चरित ध्यान के समय तुम्हारे मन में अन्य विचार आ जाते हैं, जैसे कि अपने परिवार की याद आना? स्वास्थी ने अपने मित्र का हाथ पकड़ लिया, आपको कैसे सब ज्ञात हुआ? मेरे साथ ठीक यही पाती है। पता नहीं क्यों आज शाम मुझे अपने परिवारजनों की बहुत जोर से याद आई है। मुझे बड़ा खराब लगा, शायद मुझ में सद्धर्म पालन का संकल्प दृढ़ नहीं है। मैं आपके और बुद्ध के समक्ष शर्मिंदा अनुभव करता हूं। राहुल ने कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? जब मैं पहले बुद्ध के संग में आया था तो मुझे अपनी माता, अपने दादा, अपनी दादी को बहुत याद आई। कई रातों तक मैंने आसन में मुंह छिपाया, अकेला रोता रहा। मुझे पता है कि मेरी माँ, दादाजी और दादी जो भी मेरी बहुत याद आई होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया। राहुल ने स्वास्थ्य का हाथ पकड़कर खड़ा किया और मित्र भाव से उसको गले लगा लिया। तुम्हारी भाई बहनों की बड़ी प्यारी है, वह सर्वथा स्वाभाविक है कि तुम्हें उनकी याद आए, लेकिन तुम शीघ्र ही अपने इस नए जीवन के अभ्यस्त हो जाओगे। हमें यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, हमें निरंतर साधना, अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सुनो, जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं तुम्हें अपने परिवार के विषय में बताऊंगा, ठीक है ना? स्वास्थी ने राहुल का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और स्वीकृति में सिर हिला दिया। इसके बाद राहुल अपने कपड़े धोने चला गया और स्वास्थी झाड़ू लेकर रास्ते में पड़ी बांस की पत्तियां साफ करने लगा।